feel like running away.
मन को शांति कैसे मिलेगी?
Being a professional, stress has become part of my life.
Busy रहते हुए क्या easy रहना संभव है?
What is spirituality?
Let's explore.
Let us explore.
Face to face with Brahma Kumaris.
Namaskar. फेस टू फेस विद ब्रह्मा कुमारी में आज हम फिर मिले हैं एक नई चर्चा के साथ। हमारा देश एक गांव का देश है। गांव की सभ्यता हम सब में कहीं ना कहीं तो जरूर आती है, तो आज की चर्चा भी क्यों नहीं इसी टॉपिक पे। और इस चर्चा में हमारे बीच में हमेशा की तरह है सिस्टर उर्मिल।
हेलो दीदी, वेलकम टू द शो।
हेलो ओम शांति।
दीदी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्यों ना एक नजर डालें कुछ गांव के लोगों पे।
हमारे गांव में ऐसा होता है कि कुछ लोग एक दूसरे की चुगली करते हैं और उसका बहुत बड़ा इशू बन जाता है, और लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी सोच है। कुछ लोगों को अगर करते भी हैं तो उनको सोचना चाहिए क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। वो लोग चुगली ना करें और कुछ अपने बारे में सोचे, कुछ अच्छा सोचे।
हम लोग इतनी मेहनत करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि मेहनत करते करते काम में लगे रहते हैं, उसके बीच में हमारे को जो अपने बच्चों को मिलने के लिए टाइम भी नहीं होता है, लगातार काम में लगे रहते हैं।
दीदी, जैसे कि हमने अभी कुछ लोगों के विचार सुने तो बहुत ही भोले से लग रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा उनको देख के, बहुत फ्रेशनेस सी फीलिंग आई।
ये तो है, भोलापन गांव वालों की विशेषता होती है। इवन हम आपको क्या बताएं, जब हम लोग गांवों में जाते हैं तो इतना मजा आता है कि बात मत पूछो, हमें चिपट जाते हैं, हमें गले से लगाने लगते हैं। कोई हमारे लिए दूध लेके आता है, कोई हमारे लिए लस्सी लेकर के आता है, कोई कोना ढूंढता है कहते कहाँ बिठाएं हम इनको, हमारे घर में देवियां आई हैं। जो इनका दिल होता है, जो इनकी भावनाएं होती हैं, उसका तो मैं रियली आपको वर्णन नहीं कर सकती।
ये तो है दीदी, आई थिंक उसको कहीं शहरों के साथ हम मैच नहीं कर सकते।
बिल्कुल नहीं कर सकते। कई बार हम लोग गांवों में जाते हैं, हमको कई लोग कहते हैं कि आप गांव में जाएंगे कैसे एडजस्ट करेंगे। मैं तो कहती हूँ शहरों से ज्यादा मुझे गांव के लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं, और इतने प्यार से हमारे से आकर बात करते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं, अपनी समस्याओं को सुनाते हैं, हमें बोलते हैं भैनजी अभी मत जाइयो, तुम ये आ गई तो बस हमारे तो भागधन हो गए। आजकल शहरों का माहौल तो आपको पता ही है कैसा होता है, कोई एक दूसरे से मिलना ही नहीं चाहता। भले हम कहते हैं हम बिजी हैं, लेकिन कितना भी व्यस्त हो लेकिन जीवन में थोड़ा बहुत टाइम तो निकाल सकते हैं ना एक दूसरे के लिए। आफ्टर ऑल तो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स ही हैं ना।
कितना सही कह रहे हो आप, हमें यहाँ पे तो शहरों में कई जगह पता ही नहीं होता कि हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है।
ये बात बहुत ज्यादा, और इसी कारण से ऐसा देखने में आ रहा है कि लोगों के अंदर ये उदासी की बीमारी, एकदम अकेलेपन का भाव जो पैदा हो रहा है ना, ये इसी कारण से पैदा हो रहा है। हमारे गांव वाले भी बहुत भोले होते हैं, बहुत दिल वाले भी होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने में आ रहा है कि गांवों के अंदर कई तरह की बातें ऐसी हैं जिनको यदि गांवों से दूर कर दिया जाए तो मैं समझती हूँ कि हमारे गांव जो है एक बहुत सुंदर गांव बन सकते हैं। जैसे कई तरह के इश्यूज, कई तरह की बातें गांवों के अंदर आज हम लोग देख रहे हैं। शिक्षा का पूरा ना होने की वजह से, पूरा उनको कई बातों का ज्ञान ना होने की वजह से छोटी छोटी बातों के अंदर उलझ जाते हैं। मैं आपको क्या सुनाऊं, जब हम लोग गांव वालों की सेवा करने के लिए जाते हैं तो वो हमें छोटी छोटी बातें सुनाते हैं, बहन जी बस मेरा इस बात पे इसके साथ झगड़ा हो गया, मेरा थोड़ा कूड़ा था इसने अपना कूड़ा मेरे घर की तरफ कर दिया। इसी बात हम कहते रहे तो छोटी छोटी बातें, आप आपस में बात करो। कहते हम क्यों बात करें, मैं तो बिल्कुल इनसे बात नहीं करूंगी। कई बार हम लोग भी ऐसे ट्रैप हो जाते हैं इन लोगों को समझाने में, सोचने में पड़ जाते हैं कि इन्हें समझाएं कैसे। एक बार की मैं आपको हंसी की बात सुनाती हूँ। एक बार ऐसे ही गांव की औरतों ने मुझे घेर लिया और घेर के मुझे कहने लगी, तो मैंने उनको कहा कि देखो इन बातों पे ना भगवान नाराज हो जाता है, और तुम भगवान को प्यार करती हो ना। कहती हाँ प्यार तो करते, पर मैं तो इस बात को मानूंगी नहीं, मैं तो इस बात को मानूंगी नहीं, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं मानना, मुझे तो उससे बोलना नहीं है। मैंने कहा नहीं देखो ऐसा नहीं होता, भगवान नाराज हो गया तो फिर हमें स्वर्ग में सीट नहीं मिलेगी, आप इतनी मेहनत करती हो, भगवान को याद करती हो, तो ये छोटी छोटी बातों को हम क्यों इतना मुद्दा बनाते हैं। पर मैं बताऊं इन लोगों की खासियत इतनी है, जब कोई प्यार से इनको समझाता है ना और थोड़ा सा इनके साथ प्यार से बात करो तो ये अपना दिल देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इतना मजा आता है जो इनके अंदर परिवर्तन आता है उसको देख करके तो बात ही मत पूछो। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, गांव की माताओं में ये तो ख्याल रहता ही है, नहीं हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हमें तो ज्ञान नहीं है, ये इशू इनका बहुत बड़ा होता है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, बहन जी हम कहाँ ऊंचे बन सकते हैं, कौन हमें पूछता है, ना घर में हमें पूछते ना कोई बाहर हमें पूछता। कहते नहीं तुम्हें कोई ये पूछे है ना पूछे, लेकिन तुम्हें भगवान पूछता, तुम्हारी तो बड़ी कदर। कहते कहाँ हमारी कहाँ कदर है, कोई ना पूछे हमें। मैंने फिर उनको एक बात कही, मैंने कहा देखो कि एक बार जो नंबर होते हैं ना, ये 1 2 3 4 5 ये आपस में खेल रहे थे, और जो 0 था ना वो बड़ा मासूम उदास होके ना कोने पे बैठा हुआ था। तो सबने पूछा भाई जब खेल रहे थे तो उनका ध्यान गया 0 की तरफ कि तुम उदास क्यों बैठे हुए हो। तो उसने कहा मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तब एक नंबर ने उसको अपने पास बुलाया, अपने साथ खड़ा कर लिया, तो एक के आगे 0 लग गई तो क्या बन गया,
10 बन गए।
अब उसने दोबारा उसको उसके साथ लगा दिया तो क्या बन गया,
100।
और फिर एक बार और लगा दिया तो क्या बन गया, 1000 बन गया। तो उसने कहा कि आपकी तो वैल्यू देखो कितनी है, आपके होने से हमारी वैल्यू बढ़ गई। इवन भगवान को भी तो 0 ही कहते हैं, और हम खुद कौन है, हम खुद भी तो 0 ही हैं। ये भले हमें कितना अहम आता रहता, हम इतने पढ़े लिखे, हम इतने होशियार हैं, हम इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में तो हम सब 0 ही हैं ना। 0 माना आत्मा, आत्मा बिंदी है ना।
आत्मा बिंदी कैसे हुई और आत्मा 0 कैसे हुई?
आत्मा एक सूक्ष्म शक्ति है, ठीक है ना। तो सूक्ष्म शक्ति जो है, जो सबसे छोटा स्मॉल पॉइंट कण जो होता है, उसको हम लोग 0 से उपमा दे सकते हैं।
दीदी जैसे कि हम अभी गांव के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने बोला कि एजुकेशन या शिक्षा की कमी होती है, या छोटी छोटी बातों में आपस में मनमुटाव हो जाते हैं, तो इसके अलावा भी कई इश्यूज होते हैं जो
हम सारे इश्यूज होते हैं गांव वालों के। जैसे देखो शराब पी लेना, गांजा पी लेना, हुक्का पीना, बीड़ी पीना, ऐसी ऐसी बहुत सी ऐसी बातें इनके अंदर पाई जाती है। निंदा चुगली करना, क्योंकि खाली होती हैं गांव की औरतें, अगर कहीं जाती भी है काम पे तो इकट्ठी निकलती हैं, तो उनको कई बार ऐसा टाइम मिल जाता है कि भाई अपने मन की तन की किसी की सास के साथ नहीं बनती, किसी की पति के साथ नहीं बनती। तो ये रोजमर्रा की जिंदगी की जो बातें हैं वो इन लोगों के साथ भी जुड़ी हुई हैं। तो हम इनके इश्यूज को लेकर के हर बात के ऊपर बड़े जब प्यार से इनको समझाते हैं, मानो जैसे कि जैसे मानो इनको बीड़ी पीने की आदत होती है, तो हम उनको यही बताते हैं कि भाई देखो तुम कहती हो ना अपने आप को तुम भगवान के बच्चे हो, तो सब कहते हैं हाँ जी हम ये मानते हैं, हम तो भगवान के बच्चे हैं। तो फिर हम कहते हैं देखो मुकरना नहीं। तो कहते हैं अच्छा। तो हम उनको कहते हैं भाई तुमने जब कहा तुम भगवान के बच्चे हो, तो कभी भी भगवान के बच्चे जो मंदिरों के अंदर देवी देवताओं के रूप में होते हैं, उनको कभी आपने देखा मुख पे बीड़ी लगी होती है? कहते नहीं। तो मैंने कहा तुमने अभी कहा भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान के बच्चे कैसे होने चाहिए?
बिल्कुल शांत
होने चाहिए, शांत होने चाहिए। और तुम ये क्या करते हो? कहा तुम ये शोभता नहीं, इससे तुम्हारे शरीर का भी पतन होता है, उसको भी बहुत नुकसान पहुंचता है, और मुंह से भी देखो ये चीजें पीने से बदबू आती, पैसा भी खराब जाता है। तो फिर हम उनको समझाते हैं आप एक छोटी सी गुल्लक बनाओ, परमात्मा को आप प्यार करते हो ना, वो आपका बच्चा है, तो आप उस गुल्लक के अंदर जो पैसा आपका बीड़ी और इसमें गांजे पीने में जाता है, आप वो पैसा शराब का जो भी है तो उसके अंदर आप डालो, और उसके पैसे को आप लोगों की सेवा में इस्तेमाल करो, तो भगवान आपको ताकत भी देगा और आपका जो पैसा है वो सफल भी होगा, आपकी बुराई भी खत्म हो जाएगी। और यदि आपका मन करता है कि मुझे किसी को नहीं देना, तो कम से कम अपने प्रति फल फ्रूट खाने के लिए उसको इस्तेमाल करो। जैसे प्यार से जब हम उनको समझाते हैं ना, तो बड़े प्यार से, मैं आपको क्या बताऊं, पल्ला लेके ना वो इस तरह से करेंगे और बहुत प्यार करती हैं, इतना मजा आता है कि हमें लगता है कि कमाल है। तो इन्हीं सब बातों की जानकारी देने के लिए हमारा एक ग्रामीण प्रभाग है, जिसके अंतर्गत हमारे गांवों में रहने वाले जो इतना अंदर में रहते हैं, जिन तक सारे सुविधा साधन नहीं पहुंच पाते, हमारे बहन भाई वहां पर जाते हैं, उनकी बड़ी प्यार से हर प्रकार से, चाहे उनको मेडिकल उनकी कोई जरूरत है, या स्वास्थ्य से संबंधित है, या कोई और उनको घरेलू परेशानियां उनको दूर करते हैं। तो आइए अभी सुनते हैं इस विंग के जो बड़े हैं उनका इनके प्रति क्या संदेश है।
सरकार ने गांव के विकास के लिए शिक्षा संस्थानों का आरंभ किया, लोग शिक्षित होंगे, अज्ञानता दूर होगी और गांव में सुधार आएगा। सरकारों ने शिक्षा की व्यवस्था की लेकिन चरित्र नहीं दिया। चरित्रहीन युवा आज दिशाहीन होकर के भटक रहा है, आज वही समस्या हमारे सामने खड़ी है। गांव के विकास के लिए अनेक गृह उद्योग, लघु उद्योगों के द्वारा व्यवसायों का कई योजनाएं बनाकर के लोगों को व्यवसाय दिया, परंतु सत्यता नहीं है।
आध्यात्मिक वातावरण के अंदर सुख का, शांति का, पवित्रता का एक बहुत सुखद एहसास आप इस धरनी पर आते ही अनुभव कर रहे होंगे। कैसे आध्यात्मिक शक्तियां विश्व का परिवर्तन कर सकती हैं, उसका बहुत सुंदर सैंपल एग्जाम्पल आप इस ज्ञान सरोवर परिसर में भली भांति अनुभव कर सकते हैं।
अगर हम सब आध्यात्मिक क्रांति में अपना योगदान दें, क्योंकि ये क्रांति का जो जनक है वह है स्वयं परमपिता परमात्मा, जिसने आध्यात्मिक क्रांति के द्वारा भारत को स्वर्णिम बनाना है।
यहाँ आध्यात्मिकता की सीख दी जाती है, मगर यह सीख वास्तविकता से अलग नहीं है, ये यहाँ की खास चीज है। संपूर्ण ग्राम का विकास, मोटरसाइकिल का अभियान, यह सोच भी कितनी बड़ी सोच है। और खास करके ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रस लेकर और यहाँ की युवा पीढ़ी इसमें रस लेकर ये काम करने जा रही है, एक बहुत बड़ा संदेश और मानवता के लिए एक बहुत बड़ा उपकार करने जा रही है।
दीदी, जैसे अभी हमने अलग अलग एक्सपीरियंसेस सुने, तो अब एक क्वेश्चन मेरे मन में ये आता है कि आपका तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो उसमें और जो गांव वाले होते हैं इनकी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बात की कि निंदा चुगली, छोटी छोटी बातें होती हैं, तो इन दोनों का आपस में तालमेल कैसे होता है और कैसे आप उनको समझाते हैं?
अरे सब आए कहाँ से हैं, हम सब कहाँ पैदा हुए थे, गांव में नहीं पैदा हुए क्या? तुम कहाँ पैदा हुई थी, शहर में हुई थी क्या?
शहर में तो रूट्स तो है।
रूट्स तो है ना, हम लोग बेसिकली सभी गांव के, इवन ब्रह्मा बाबा भी जो इस संस्था के संस्थापक थे वो भी गांव में ही रहने वाले थे। जब ये छोटी छोटी बातों को लेकर के आते हैं, देखो होती तो ये सभी, शहर वालों के अंदर भी यही बातें होती हैं, लेकिन गांव वाले बस अपनी बात को दिल खोल के रख देते हैं, ये फर्क होता है। शहर वाले थोड़ा उगलने में सोचते हैं, सोफिस्टिकेटेड वे में अपनी बात को कहेंगे, तो हम उनको यही बात बताते हैं कि एक बार जैसे एक मुझे किसी ने बोला कि भाई देखो इधर की उधर सास मेरी मानती नहीं या बहू मेरी मानती नहीं, आपस में निंदा चुगली कई बातें हो ही जाती हैं, तो हम उनको ये कहते हैं कि भाई देखो अगर सास तुम्हारी बड़ी है तो बड़ी की इज्जत करना हमारा फर्ज है, ठीक है, अगर वो उनको आपकी कोई बात पसंद नहीं आती है आप अपनी शक्ति को बढ़ा लो, अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो परिवार में होगा ही, लेकिन मुझे उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट कैसे करके चलना है इस बात को मुझे देखना है। अगर हम अपनी बात को इधर उधर फैलाएंगे तो इसका मतलब हम गंदगी बखेर रहे हैं, और जब वही बात दूसरे तक पहुंच जाती है तो फिर क्या होता है, फिर घर के अंदर और कलेश बढ़ता ही है ना, तो इसलिए इन बातों को हम जितना ना फैलाएं उतना ज्यादा अच्छा, इन बातों को संभाल के रखने में ही हमारी भलाई है।
यहीं पे शायद हमारी सहन शक्ति भी यूज होती है और कितना हम खुद में एक्सेप्ट करके उसको समाते जाते हैं।
हाँ, ये बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए हमारे यहाँ पर बहुत सी गांव की महिलाएं आती हैं, आपको हम क्या बताएं, ऐसे रोते रोते आती हैं, और बेचारों की जब थोड़ी सी हम बात सुनते हैं और उनको ये बातें समझाते हैं ना कि कोई बात नहीं, भोलों का भगवान होता है, कोई तुम्हें नहीं प्यार करता, कोई तुम्हें नहीं दिल से लगाता, तो भगवान तुम्हें दिल से लगाता, देखो तुम भगवान के दर पर पहुंच गई हो, तुम ठीक स्थान पर पहुंच गई हो, तो जब हम इस तरह से उनसे प्यार से बात करते हैं ना, तो वो रोज जब आना शुरू करते हैं तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं मैं आपको क्या बताऊं, आप अगर उनके अनुभव सुनेंगे ना तो आप दंग रह जाएंगे, तो आओ जरा सुनते हैं अभी उनके अनुभव।
दीदी ने एक दिन गांव की सेवा की जिम्मेवारी मुझे सौंप दी। पहली बार जब मैं गई थी वहां पे तो देखा बिल्कुल माताएं, उनका उठना बैठना चलना फिरना बिल्कुल जैसे था, गांव जैसा ही था। परमात्मा शक्ति ऐसी शक्ति है जो कि इनको आहिस्ता आहिस्ता ज्ञान समझ में आ गया, परमात्मा ने इनको इतना कर दिया कि ये अब बड़ों की महफिल में भी बैठने लगे।
रवि है कि जब से बाबा मिला, जब से मेरी बहुत ही तो कदर होगी, मुझे बहुत ज्ञान मिला बाबा से, बहुत ही अनुभव भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, जो मैं चाहती हूँ सोचती हूँ मुझे अगले दिन वो ही बाबा करके दे देता है, इसलिए मेरे कदम धरती पर नहीं टिकते, मैं बहुत खुश हूँ।
मैं एकदम जंगल में बैठी थी और मेरी भैंस चल रही थी, मैंने एकदम से बाबा ने मेरी चोटी पकड़ी और दिल को धड़कन लगी और बोले माता दी आप उठो, दलदल में कहाँ बैठी हो आप निकलो। मैं बाबा के घर में आई और बाबा के घर में आते आते मुझे पूरा ज्ञान का परिचय होता गया और तो मेरी खुशी बढ़ती गई।
मेरा पूरा परिवार ज्ञान में चलता है, मुझे बहुत खुशी है इस चीज, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ और मेरा मुझे बहुत खुशी है।
आने लगे, आने लगे,
अच्छे अनुभव थे दीदी। गांव की माताएं इतनी ज्यादा कंटिन्यूअसली बोल लेती हैं, सुन के ही बहुत अच्छा लगता है, हम तो सोच नहीं सकते।
ऐसा दम आ जाता है कि इनके अंदर बात मत पूछो। ये प्रदर्शनी में आपको बताऊंगी अभी कि ऐसे अच्छे तरीके से समझाती हैं कि हम भी किसी को क्या समझाएंगे। एक बार मैं उनको देख रही थी प्रदर्शनी समझाते हुए, मैं तो खुद हैरान हो गई कि किसी ने ज्ञान को समझना सीखना हो तो इनसे सीखो। एक चित्र था उनके हाथ में जिसमें कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां नहीं लेती बल्कि 84 जन्म लेती है। तो उसमें ना 3-4 चित्र बने हुए, खरगोश है, व्यक्ति है, गधा है। तो उसमें उसको वो बता रही थी बड़े प्यार से, देखो खरगोश के आगे कांटा लगा है ना, गधे के आगे भी कांटा लगा हुआ है, कुत्ते के आगे भी कांटा लगा हुआ। ये सीधी आत्मा, इसने शरीर छोड़ा तो ये कहाँ गई, इंसान में गई। अब देखो कितने आराम से फिट हो जाता है दिमाग में, कभी भूलेगी ऐसी बात
नहीं। बिल्कुल, बहुत सिंपल लॉजिक है,
बहुत अच्छी तरह से ये बात को समझाते, हम भी नहीं समझा सकते। मैं आपको बताती हूँ ब्रह्मा कुमारी इसकी जो ये विंग काम कर रही है, ये प्रभाग बहुत अच्छे से आजकल चल रहा है और एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू किया है, जो प्रोजेक्ट जिसका नाम है शाश्वत योगिक खेती। माना खेती को हम अच्छा कैसे बनाएं, क्योंकि आज हम लोग देखते हैं ना कि हमारी जो उपज हमें मिल रही है, जो हमें खाने को सब्जियां या फल हमें मिल रहे हैं, उसमें इतने सारे केमिकल्स होते हैं कि हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया और इसमें शाश्वत यौगिक का मतलब यही है कि योग के द्वारा हम लोग अपनी खेती को अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये लोग जैविक खाद का प्रयोग करते हैं और ये खाद कोई रासायनिक खाद नहीं होती है, किसके अंदर एक द्रव होता है और इसको ये लोग खेतों में डालते हैं। तो जब ये किसानों इत्यादि से, इस विंग से जुड़े हुए भाई बहने बात करते तो उनको यही कहते हैं, बड़े अच्छे से उनको कन्विंस करते हैं कि भैया आपके पास कितनी जमीन है। वो कहते हैं मेरे पास 3 एकड़ सपोज करो उनके पास जमीन है, तो उनको कहते हैं कि उसमें से आधा एकड़ पे जो हम आपको बताते हैं आप उसे प्रयोग करके देखो। वो उस पर प्रयोग करके देखते हैं, उसमें जैविक खाद को डालते हैं और खाद को डालने के बाद बीज को बोते हैं और बीज को बोने के बाद खुद उसमें शाश्वत जो कहा गया ना, वो इसीलिए कहा गया कि वो खुद उस खेत के अंदर जाकर के बैठते हैं और अपनी चेतना को या खेत में इमर्ज करते हैं और वहां जो बीज बोए हैं उनको अच्छे वाइब्रेशंस देते हैं।
इसका मतलब कि वो जो पेड़ या पौधे होते हैं या बीज होते हैं उनसे थॉट्स के जरिए बात
के जरिए, जब थॉट के जरिए उसको वाइब्रेट, क्योंकि जो सोच हमारी एक शक्ति ही तो है ना, जब बुरे का प्रभाव बुरा हो सकता है तो अच्छे का प्रभाव अच्छा भी तो होता ही है ना। तो जब वो बैठ करके उसको एक बच्चे की तरह पालना देते हैं, बीज को उसे अपना समझते हैं और उसको जब पालना देते हैं इस तरह से प्यार से, पानी डालते हुए भी योग में जैसे उसको अमृत डाल रहे हैं, इस भावना से उसमें पानी डालते हैं खेत में, तो ऐसा देखने में आया कि जो फसल लगी वो बहुत अच्छी लगी और बहुत ताकतवर फसल लगी। करते करते ये प्रोजेक्ट जब गवर्नमेंट के पास भी पहुंचा तो उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा उसकी प्रशंसा की और एक दिल्ली में ही पूसा में इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पर एक बहुत बड़ा मेला लगा था। तो उसके अंदर ये देखने में आया कि जब इस प्रोजेक्ट के बारे में उनको बताया गया तो सभी ने इस प्रोजेक्ट की बहुत सराहना की और धीरे धीरे सभी जगह ये प्रोजेक्ट फैलता चला आ रहा है और इस तरह से एक मॉडल तैयार करने में ये जो प्रभाग है काफी मदद कर रहा है। गांवों गांवों के अंदर ये लोग जाते हैं, साइकिल यात्राएं निकालते हैं। इतना बड़ा साइकिल यात्रा अभियान निकाला गया था जो ऑल ओवर इंडिया निकला था, पूरे भारतवर्ष के अंदर, और उसके जो परिणाम हमारे सामने आए थे वो बहुत ही अच्छे थे।
आप जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए भी कुछ प्रोग्राम्स करते हैं?
हाँ, उनके लिए कई तरह के प्रोग्राम्स रहते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो खेती विभाग से जुड़े हुए जितने भी संस्थाएं हैं, डेयरी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें खास लोगों का जाना होता है और वहां जाकर के इन्हीं से संबंधित जो बातें हैं वो उनको बताते हैं। तो बहुत से रिसर्च स्कॉलर्स जो ग्रामीण प्रभाग से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे उनके अनुभव हैं और वो इस प्रोजेक्ट की भी बहुत ज्यादा सराहना करते हैं।
दीदी, मैं ये सोच रही थी कि इतना परिवर्तन जो लोगों में आता है उसका मूल क्या है?
देखो, किसी भी चीज का, जैसे कोई पौधा है उसका मूल होता है
बीज।
बीज इसी तरह से जो जीवन में परिवर्तन आता है उसका मूल मैं स्वयं हूँ। जब हमें ये समझ आ जाता है कि मैं स्वयं ये शरीर नहीं लेकिन इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति आत्मा हूँ, हम जब उन्हें इस बात को बताते कि तुम यहाँ पे बिंदी क्यों लगाती हो, मंदिर में जाती हो तो तिलक यहाँ पर क्यों दिया जाता है, पुरुष को भी देते हैं, बच्चे को भी देते हैं, एक मदर को भी देते हैं, स्त्री को भी दिया जाता है, तो यहाँ पर आत्मा जो शक्ति है उसका निवास होता है। और ये जो शरीर को चलाने वाला जो ड्राइवर है वो आत्मा ही है। जैसे गाड़ी के अंदर होता है एक हॉर्न होता है, तो ये हम उनको बताते हैं कि मुख तुम्हारा क्या है, ये हॉर्न है, तो ये पोंपू को कब बजाया जाता है,
जब जरूरत
हो। अगर वैसे बजाओगे तो क्या होगा,
वेस्ट
ही होगा ना, शोर ही होगा। तो इसलिए इसको तब इस्तेमाल करा करो जब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। इसको फालतू इस्तेमाल करने से हमारी शक्ति खत्म होती है। और आत्मा का जो परमात्मा पिता है उसके साथ अगर हम अपना संबंध जोड़ते हैं, जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं क्योंकि वो सभी का पिता है, तो उसके साथ संबंध जोड़ने से हमारे अंदर में शक्ति आ जाती है। क्योंकि जो शक्ति मिलेगी वो किससे मिलेगी, जो स्रोत होगा उसी से तो मिलेगी ना। तो इसलिए जो शक्ति का स्रोत है वो शिव बाबा अर्थात परमात्मा है। उसके साथ अगर हम संबंध जोड़ते हैं तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाता है। कितनी भी बातें होती हैं हम उनसे अलग रह सकते हैं।
तो दीदी हमें भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस थ्रू मेडिटेशन कराइए ना।
हाँ जरूर, दो मिनट के लिए हम सभी बैठते हैं। और खास हमारे जो ग्रामीण भाई बहने जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं उनको भी बुला लें अपने पास में, और हम सभी दो मिनट के लिए शांति में बैठते हैं, उस भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं। सब आराम से बैठ जाएं, विचार दें स्वयं को, ये शरीर मेरा मोटर गाड़ी के समान है और मैं इसमें रहने वाली एक चेतन शक्ति आत्मा हूं। जैसे शरीर का पिता शारीरिक पिता है, इसी प्रकार आत्मा का पिता परमात्मा शिव बाबा है। मुझे रोज उससे शक्ति भरनी है, एहसास करें उसकी शांति की शक्ति मुझे मिल रही है।
अच्छा एक्सपीरियंस रहा दीदी, खुद को भी वाइब्रेशंस दी और विश्व का सेवक भी बने, फल फूल और पौधों को भी प्योर किया। सो थैंक यू सो मच, आज का एक्सपीरियंस तो एक बहुत ही लाजवाब था।
धन्यवाद।
गांवों के लिए हम कहते तो हैं कि वह हमारे देश की शोभा है, लेकिन कैसे हम ग्रामीण जीवन को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं ये हमने आज सुना और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे। आपका जो आज का अनुभव रहा अगर आप वो हमें भेजना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
हमारा पता है पीस पैलेस D2059A पालम विहार गुड़गांव 122017, फोन नंबर्स 0888223738, 9818002531, 0124 407-1715. ईमेल facetoface.bk@gmail.com.
हमने जाना कई बातों का तत्काल हल नहीं होता, पर समझबूझ से उन्हें अच्छी तरह से निपटाया जा सकता है। समझबूझ को बढ़ाने में आध्यात्मिकता का अहम रोल है। शाश्वत योग के द्वारा हम अपनी उत्पादन क्षमता और गुणात्मकता को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।
जरा सोचिए, इतनी समझ हमें परमात्मा के सिवाय और कौन दे सकता है।
आवाज हर दिल से निकली।